Aquí te lleva eso.
पागल खाने में आपका स्वागत है। वेलकम टू पागल खाना रेंट्स फ्रॉम ए मेंटल असाइलम। पागल खाने की तूती। आज हमारे बीच इरफान खान नहीं रहे। इरफान खान साहिबजादे इरफान अली खान हम सबके चहेते अभिनेता, और हम सभी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम वेबसाइटों पे, अपने आसपास के दोस्तों मित्रों में लोग दुखी हैं, वास्तव में दुखी हैं। मैं अभी शाम को बाज़ार गया था और एक अपार्टमेंट से शंख बजने की आवाज़ आई, तो मैं उधर की ओर टहलते हुए गया और मैंने देखा कि लोग घंटियां बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। ये 6:30 बजे के आसपास की बात होगी। तो मैंने पूछा कि ये क्या है भाई, आज भी कहा गया है क्या ये सब करने को? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, गार्ड ने मुझे कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो एक दिन जो करवाया था ना वो फिर आदत पड़ गई है, तो वो रोज़ जो है 5 बजे कोशिश करते हैं लोग, तो करते करते 6:30 बज जाता है और वो थाली घंटी शंख बजाते हैं, इम्यून हो गए हैं लोग अब, और वो स्पेसिफिकली उसी अपार्टमेंट में ये काम नियम से करते हैं। ये बात जब गार्ड से हो रही थी तो मुझे अचानक एक सीन याद आया। हैदर फिल्म आपने देखी होगी, हैदर। हैदर में इरफान का किरदार जो था उसका नाम था रूहदार। बहुत मजबूत किरदार था। और रूहदार का पहला ही दृश्य मुझे याद आता है कि रूहदार श्रीनगर में कहीं बैठे हैं और उनसे कोई आके बोलता है कि अरे देखिए देखिए वो आदमी अपने घर में नहीं घुस रहा है, बाहर ही लगातार खड़ा है, जरा देख लीजिए। तो रूहदार वहाँ जाता है, मतलब इरफान वहाँ जाते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने घर के बाहर सिर लटका के फिरन पहन के खड़ा है, बशारत पीर है वो। बशारत पीर ने वो एक्टिंग की है, बहुत छोटी सी संक्षिप्त एक्टिंग है, बशारत पीर लेखक हैं। तो रूहदार वहाँ पहुँचता है और बोलता है कार्ड दिखाओ, और वो तुरंत कार्ड निकालता है, ये कार्ड दिखाओ, वो कार्ड दिखाओ, आइडेंटिटी दिखाओ, जो जो मांगते हैं वो व्यक्ति निकाल के दिखा देता है। और उसके बाद फिर रूहदार कहता है ठीक है अब अंदर जा सकते हो, और वो आदमी अंदर अपने घर में चला जाता है थैंक यू बोल के। कश्मीर जिस सदमे में रहा है पिछले 70 साल कि वहाँ पर आदमी को अपने घर में घुसने के पहले आई कार्ड दिखाने की आदत पड़ गई है। ये रूहदार का जो दृश्य था मुझे याद आया जब मैंने देखा कि एक दिन के हुक्म के बाद लोग मेरे मोहल्ले में एक अपार्टमेंट में लगातार घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, लोग कंडीशनड हो रहे हैं। जैसे कश्मीर में वो किरदार कंडीशनड हो गया कि बिना अपनी पहचान दिखाए अपने घर में नहीं घुस पाया, वैसे ही लोग कंडीशनड हो रहे हैं और ये कंडीशनिंग लोगों की जान ले रही है। हमारे बीच आज हमारे दो साथी हैं और हम सभी दुखी हैं इरफान के जाने से, रूहदार के जाने से। वो शख्स था जो कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ के वापस आया था और अचानक आज चला गया हमारे बीच में से। और हमारे दो साथी हमारे साथ हैं इस समय और मैं चाहूँगा कि आप सबसे आज बात करवाऊँ। हमारे एक साथी हैं विश्व दीपक और एक साथी हैं रंगनाथ सिंह। रंगनाथ और विश्व दीपक दोनों हमारे खास साथी हैं, दोनों लेखक हैं, पत्रकार हैं, और हम लोग अभी बहुत देर से यही बात कर रहे थे कि ये जो कंडीशनिंग हो रही है, जो आदमी के दिमाग को जो लगातार ठोक बजा के एक दिशा में मोड़ा जा रहा है, इसके लंबे प्रभाव क्या होंगे, कैसे इस कोरोना के संकट के दौर के बाद लोग एक दूसरे से बिहेव करेंगे, एक दूसरे से पेश आएंगे, ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, खीज, अलगाव, यही सब बातें हो रही थी। विश्व दीपक से हम जानना चाहेंगे, विश्व दीपक क्या लगता है आपको, मतलब ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये गुस्सा, ये जो मौतें हो रही हैं, कैसे देखते हैं इसको आप?
असल में इरफान का आपने जिक्र किया, तो इरफान के बारे में मतलब कल जब ये खबर आई कि इरफान को आज अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो पता नहीं क्यों, जैसा कि आपने बताया फिर बाद में चर्चा के दौरान, तो उसी समय मुझे एक अजीब सा झटका लगा और मन जो है मन में एक उदासी सी छा गई और बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि चूँकि आपने डिप्रेशन की बात की है, अवसाद की बात की है, तो इन तमाम मानसिक परेशानियों से मैं गुजरा हूँ पिछले कई महीनों में, तो मेरा निजी अनुभव भी है इन सब चीज़ों का। तो ऐसा लगा कि कुछ एक झटका सा लगा, जैसे एक बिजली का झटका लगता है आदमी को, लगता है एक अवचेतन एक शून्यता सी आ गई हमारे अंदर कल, जैसे ही खबर मिली कि इरफान को अस्पताल में एडमिट किया गया है, अंदर से एक आवाज़ सी आई, ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा लगा कि अब इस बार इरफान ज़िंदा वापस नहीं आएंगे बाहर। पर मैंने इस ख्याल को झटक दिया बाहर, उसको उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, मुझे लगा कि ऐसा सोचना बेमतलब है। लेकिन यही ख्याल मेरे अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर दो बार आया और मैंने अपने ऑफिस में अपने जो मेरे कोलीग्स हैं उनको मैंने बोला कि आप किसी से इरफान की ऑर्बिट लिखवा लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा हंच हो रहा है, ऐसी गट फीलिंग है कि शायद वो वापस नहीं आएंगे। और आज दोपहर को ये खबर मिली, तो जैसा कि आप बता भी रहे थे कि ऐसा एहसास मुझे भी, सिर्फ मुझे नहीं हुआ, भारत में बहुत सारे लोगों को हुआ।
बहुत सारे,
हाँ, मैंने देखा कि फेसबुक में भी कुछ लोगों ने लिखा कि कल रात की जो बेचैनी थी, अब समझ में आ रहा है कि उसका कारण क्या था।
वो कल रात से आज सुबह तक लगातार परेशान
लगातार
और जब ये खबर आई है तो लोग डूब गए,
डूब गए लोग। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है कि क्यों बेचैनी थी कल रात की, क्योंकि इरफान को जाना था। तो इरफान का जाना तो एक मायने में यह है कि एक व्यक्ति चला गया, और हमारी जो बेचैनियाँ हैं आपस में एक एक आदमी की, तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा निजी मामला है, लेकिन दरअसल ये उतना निजी मामला है नहीं। हाँ, ये जो लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन की वजह से जो बेचैनियाँ बढ़ी हैं लोगों की, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं, वो तो है ही, लेकिन पिछले दिनों, पिछले सालों में, कई सालों में, 5-6 सालों में, 7 सालों में, ठीक है, हम सबके दिमाग की, हमारे सबकी चेतना की, हम सबके चुनाव की, हम सबके टेस्ट की, हैं, हम सबकी जो संवेदनाओं को जिस तरीके से मीडिया माध्यमों के जरिए नियंत्रित और एक खास दिशा में उसको हांका गया है भेड़ों की तरह, तो उससे एक हम एक हमारी जो समूची सामाजिक संरचना है वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में बदल गई है, एक खास किस्म के मेंटलिज़ाइलम आप इसको कह सकते हैं कि भारत की जो इस समय सामूहिक मानसिक स्थिति है ना, अगर आप भारत को एक व्यक्ति माने हैं, तो भारत की इस समय जो सामूहिक मानसिक स्थिति है ना, वो एक खास तरह का ऐसा लगता है कि पूरा महादेश जो है एक मेंटलिज़ाइलम में बदल गया है। लोगों की अपनी निजी निजी कहानियाँ हैं, अपनी व्यक्तिगत बातें हैं सबकी, लेकिन मुख्यतः सामूहिक तौर पर वो जो है एक हताशा और अवसाद की स्थिति में गया है और आगे भी जाता जाएगा। आर्थिक कारण भी हैं उसके, लेकिन मुख्यतः इसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, ऐसा मुझे लगता है। और सांस्कृतिक कारण से का इस बात का एक दूसरा सिरा इस बात से भी जुड़ता है कि इरफान के जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि लगभग ट्विटर पर 10 ट्रेंड उनके नाम से जो हैशटैग बनाए गए थे, 10 ट्रेंड कर रहे थे। यही हाल फेसबुक में था, यही हाल सोशल मीडिया में था, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में अपना स्टेटस डाल रखा था, अपनी डीपी बदल दी फेसबुक में सारे इरफान के नाम पे। तो इसके इन सारी चीज़ों के बीच में भी इरफान एक ऐसे कल्चरल आइकॉन आप कह सकते हैं के रूप में उभरते हैं कि इन सारे अवसाद, एंग्जाइटी, हताशा और डिप्रेशन की इस मेंटल एजाइलम में भी वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरते हैं, एक ऐसी रोशनी के रूप में उभरते हैं, रूहदार जो है आपका हैदर का, ऐसे रूहदार के रूप में उभरते हैं जो हर आदमी को बताता है कि तुम्हारी पहचान ये है, अब तुम अपने घर जा सकते हो, तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है। तो अब इसी बात का सिरा जो है, हम बाबा रंगनाथ, इनको हम लोग बाबा के नाम से जानते हैं, वैसे तो ये रंगनाथ सिंह जी हैं लेकिन सामूहिक रूप से इनको बाबा रंगनाथ जानते हैं, तो उनकी तरफ मैं ओवर टू बाबा रंगनाथ। आप बाबा कैसे देखते हैं?
लेकिन एक सवाल, कैसे देखते हैं ये तो है, लेकिन मेरी तरफ से भी एक सवाल ये है रंगनाथ जी से कि एक व्यक्ति की मौत, इरफान 1 अरब 30-40 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की मौत एक इतने बड़े समाज को इतने बड़े संकट के बीच कैसे उद्वेलित कर देती है और क्यों उद्वेलित करती है?
इसी समय एक बात और समझिए कि ये समाज जो बेइंतहा बटा हुआ है धर्म के नाम पर,
बेइंतहा बटा हुआ,
छोटी छोटी बातों में दुश्मनियां हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं और सोशल साइट्स में ट्रेंडिंग चल रही है, और लड़ाइयाँ हो रही है एक चीज़ पे, लेकिन इसी बीच में एक आदमी ऐसा होता है जिसके नाम जो सबको जोड़ देता है, अचानक से जोड़ देता है।
तो ये क्या प्रोसेस है, इसको कैसे देखा जाए, मतलब ये इस पर ऐसा बात कीजिए।
हाँ थोड़ा वो नज़दीक आ जाइए।
खैर मैं तो नहीं बता सकता कि कैसे होता है, लेकिन हम मुझे इससे याद आ रहा है कि हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था कि एक सफल फिल्म होने का लक्षण क्या है, कि अगर पूरी फिल्म में ऐसा कोई एक सीन भी है या दो मिनट भी ऐसा है जहाँ पे ऑडियंस फिल्म से करेक्टर से रिलेट कर जाती है या उसको लगता है कि ये मेरे साथ भी हुआ था, तो फिल्म सफल है क्योंकि दर्शक उसको लेके जाता है अपने साथ। तो अभी चाहे वो इरफान पठान हो, अरे इरफान खान हो, चाहे गुरदत्त हो, या जितने भी अभिनेत्री या अभिनेता हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में दो चार मिनट उनसे कनेक्ट हुए रहते हैं, वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है शायद, उतना और सबसे इमोशनल हिस्सा होता है, तो इसलिए सबके जीवन का वो हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात इरफान की मौत के बाद मुझे जो फील हुआ, बहुत मेरे गूज बम्प हो रहे हैं कि आदमी, हम लोग इतनी बहुत सारी, हम खुद ही बहुत नकारात्मक सोच में घिरे रहते हैं कि सब कुछ बुरा हो चुका है, सब कुछ बुरा हो चुका है, सब बुरा है, हर लॉकडाउन में ही कंपनियां जो कर्मचारियों के संग कर रही हैं, सरकार जो कर्मचारियों के संग कर रही है, मिडिल क्लास अमीर लोग जिस तरह से मजदूरों को देख रहे हैं, वो सब निराशाजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान को जो प्यार मिल रहा है ना, तो यानी सबके बीच में भी कोई आदमी कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत लोगों का दिल जीत रहा है और बहुत कुछ सकारात्मक है। लोग मेरे जैसा आदमी भी, मैंने भी अपने व्हाट्सएप की स्टोरीज में उसको लगाया, मुझे भी लगा कि हम, मुझे दुखी होना चाहिए, मैं दुखी हूँ और मुझे अपना दुख दिखाना चाहिए। तो इस तमाम तरह की नकारात्मकता के बीच भी इरफान या कोई भी ये जो कला है, शायद अभिनय और जो ये चीज़ें हैं, उसमें सकारात्मकता है और एक सॉफ्टनेस है जो इस वक्त मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है।
ये दुखी होना चाहिए मतलब नहीं समझे, ऐसे इसको एलाबोरेट करना, तो दुखी होना क्यों चाहिए मतलब, नहीं अगर दुख हो रहा है तो जबरदस्ती क्यों?
नहीं, दुखी होनी, मैंने नहीं कहा कि जो दुखी नहीं हो, जो दुखी है ये होने में बुराई नहीं है, क्योंकि आप उस, वो आपका हिस्सा है। कई लोगों का ईगो हर्ट होता है ना कि हीरो तो वहाँ मरा, आप यहाँ क्यों दुखी हैं। जो दुखी नहीं हो सुखी रहे, लेकिन जो दुखी है वो दुखी उसमें होने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप, वो मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने उसकी 10 फिल्में देखी हैं, मैंने अभी 15 दिन पहले उसकी इंग्लिश मीडियम फिल्म देखी। तो आमतौर पर शायद किसी के लिए अगर कोई बहुत तर्कवादी हो तो उसको यही लगेगा ना कि मरा तो अमेरिका में है, मरा तो बम्बई में है, कौन सा तुम्हारे घर का है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि वो भी घर के सदस्य जैसा, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा है। उसने मुझे 10 बार हंसाया था, 10 बार 10 ऐसे उसने चीज़ें प्ले की हैं जो मुझे लगा मैं ही हूँ। जैसे उसकी हासिल फिल्म है, तो हासिल फिल्म में आप हर नौजवान या जो यूपी बिहार के कॉलेजों में पढ़ा है ना, कहीं ना कहीं अपने को रिलेट करता है, तो अपने जीवन को आप उससे रिलेट करते हैं। तो उसके लिए दुखी होने में मुझे लगता है कि हाँ, ये आप दुखी होना चाहिए, अगर कोई है दुखी तो उसको अभी दिखना चाहिए कि हम दुखी, हमें इसमें कोई शर्माने की बात नहीं कि हम दुखी हैं, कि इरफान के जाने से हम दुखी हैं। क्योंकि वास्तव पर सोशल मीडिया पर इस तरह की भी निगेटिव ट्रॉलिंग चलने लगती है कि अगर जैसे आप लिख रहे हैं ना कि इरफान खान के जाने से मैं बहुत दुखी हूँ, तो कुछ लोग जिनको विघ्न संतोषी कहते हैं इस बात से दुखी हो जाते हैं कि लोग दुखी हैं, तुम क्यों दुखी हो कि इरफान के लिए, तुम क्यों दुखी हो भाई। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि भाई हम इसलिए दुखी हैं ना क्योंकि वो मेरे जीवन का हिस्सा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेहदी हसन की मृत्यु जब हुई तो मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरे जीवन का हिस्सा है। ये फिजिकल उस तरह से लॉजिक नहीं लगा सकते कि मेहदी हसन को कभी देखा नहीं, पाकिस्तान में रहते थे, क्योंकि अपने, मैंने अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे नाजुक क्षण थे जो मेहदी हसन के संग गुजारे हैं, या बहुत सारे ऐसा कठिन समय था जो इरफान खान की पान सिंह तोमर मैंने 2-4 बार देखी है, क्योंकि मैं बहुत अवसाद में हूँ या संतरास में हूँ या दुख में हूँ, तो मुझे हल्की फुल्की फिल्म देखनी है, तो इरफान की फिल्म देख रहा हूँ। तो जीवन का उसी तरह से हिस्सा है जैसे कोई बाहरी आदमी हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए अगर मैं दुखी हूँ तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये बहुत ही प्राकृतिक है।
हाँ, मतलब इसमें अप्राकृतिक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये सहज बात है। जो ये कह रहे थे कि इरफान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको भी थोड़ा हम समझने की, हम खुद भी समझने की कोशिश कर रहे थे, हम कहीं लिख नहीं पाए कुछ, पर हम ये जानना चाह रहे हैं आखिर ऐसा क्या है एक आदमी के अंदर कि वो सबको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। कहीं ना कहीं हर आदमी उसकी मौत से दुखी है, सबको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, यहाँ तक कि बहुत सारे राजनेता मैं देख रहा था कि जो साउथ इंडिया के हैं, जो शायद ही हिंदी समझते होंगे, उन सब ने भी इरफान की मौत पे अपना अफसोस जाहिर किया है। इस विभाजित समय में, है ना, जैसा कि आप कह रहे थे कि इस विभाजित समय में ये जो एक मेंटल एजाइलम बन चुका है पूरी कंट्री, तो उसमें वही रूहदार की तरह ही वो आता है और सबको अपना अपना आई कार्ड बोलता है कि दिखाओ और अपने अपने घर जाओ। ये घर क्या है असल में? घर घर मतलब ठीक है, एक आसरा है, घर एक छत है ना, लेकिन घर एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है बेसिकली, तो वो आदमी क्यों खड़ा था अपने घर के बाहर? क्योंकि उसको पता है कि ज़मीन उसी की है, उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसी के आसपास घूम रहा है, लेकिन घर जा नहीं पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा। तो ये रूदार का जाना जो है ना, वो सबको अपना अपना आई कार्ड दिखाता था। बस इनके इनको पान सिंह तोमर, मैं मुझे भी बहुत पसंद थी वो फिल्म, क्योंकि इसमें वो बोलता है कि संसद तो डकैत तो संसद में रहते हैं, चैंपियन में तो बागी होते हैं। ये बड़ा बड़ा फेमस डायलॉग था उनका। तो तमाम कलर हैं, तमाम रंग हैं जिंदगी के, इरफान ने सबको दिया और वो चले गए, पर ठीक है, याद रहेंगे वो।
देखिए इसमें जो है, मतलब एक चूंकि रंगनाथ जी हैं हमारे साथ, और इसलिए मैं ये सवाल खासकर उठाना चाहूँगा कि जैसे इरफान की जो पर्सनैलिटी थी ना, वो रेगुलर पर्सनैलिटी नहीं थी। हम लोग तो ये समझते हैं ना कि रेगुलर पर्सनैलिटी नहीं थी, थोड़ा सा वो मतलब नॉर्मल से हट के, जैसे फ्राइडियन जो पूरा मनोविश्लेषण है, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कहती है कि हर व्यक्ति में एबनॉर्मलिटी का एक, असामान्यता का एक हिस्सा होता है। तो वो जो सिर्फ मैं अभिनय के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इरफान के जीवन और इरफान के अभिनय में आउट ऑफ द टेक्स्ट जो चीज़ें दिखती थीं, उसमें लगता था कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उस व्यक्ति को विशिष्ट बनाती हैं। एग्जाम्पल लूँगा मैं, चूँकि रंगनाथ यहाँ पे हैं तो मैं किशोर कुमार का एग्जाम्पल लूँगा। और मैंने ये कहीं पढ़ा था कि किशोर कुमार जब मरे थे ना, तो बम्बई से लेकर खंडवा तक जो है दुख की लहर फैल गई थी, पूरे देश में लोग दुखी हो गए।
हाँ,
मतलब जैसे अमिताभ बच्चन जैसे महानायकों को आप छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल औसत किस्म के किशोर कुमार से लेके और तमाम लोगों को लीजिए, तो आखिर ऐसा क्या था किशोर कुमार में, या ऐसा क्या था इरफान में, वो नॉर्मल से हट के वो एबनॉर्मेलिटी जो हमें खींचती थी। हाँ, मैं इसलिए समझना चाहूँगा क्योंकि रंगनाथ सिंह ने बहुत पहले किशोर कुमार का एक इंटरव्यू अनुवाद किया था, और बड़ा अद्भुत इंटरव्यू था, मुझे याद नहीं है वो क्या है। हाँ यस, हाँ हाँ, और उसके बहाने मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या क्या, मतलब हम सभी को जो है किसी की एबनॉर्मेलिटी खींचती है, मतलब जैसे क्या हम पागल होने को एस्पायर करते हैं, ऐसा है क्या? हम सामान्य मनुष्य अगर एबनॉर्मल लोगों के जाने से या उनके होने से राहत पाते हैं या दुखी होते हैं या भाव हमारे अंदर पैदा होता है, तो क्या ऐसा है कि हम औसत लोग, सामान्य लोग एबनॉर्मेलिटीज से प्रभावित हैं, आकर्षित हैं उनकी ओर? क्या हमारे भीतर की एबनॉर्मेलिटी उनको छू रही है? मतलब ये इस लेवल पे मैं समझना चाहूँगा, रंगनाथ बताएं बेहतर।
खैर, एक इस पागलपन पे तो यही कहना चाहूँगा कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लग्जरी है। हर कोई पागल हो जाना चाहता है लेकिन नहीं होता है, जैसे कि आदमी नौकरी नहीं छोड़ता है, जैसे कि आदमी सुसाइड नहीं करता है, उस तरह पागल होना भी नहीं हो सकता, संभव नहीं है कि आदमी सोचता है अगर मैं पागल हो गया तो बीबी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, भाई का होगा। तो जो लोग पागल बायोलॉजिकली हो गए हैं वो तो घटना है, स्वेच्छा से पागल हो पाना तो लग्जरी है। और हाँ, बाकी मुझे नहीं लगता कि जैसे किशोर कुमार की ही एबनॉर्मेलिटी है या किसी और की भी हो, ये लोगों को उसके बारे में बहुत पता होता है, ये बहुत ही निस जानकारी है। 10 लोग अंग्रेजी पत्रिका में छपा हुआ लेख है जिसको 2-4 हज़ार लोग पढ़े। हमें लगता है कि जैसे हम लोग, मैं देख रहा हूँ जो,
लेकिन लोग सामान्य आदमी जब किशोर कुमार को उछलता कूदता आवाज निकालता देखता है तो भले वो
नहीं, हाँ हम उसी पे, हाँ मैं कैरेक्टर पे ही आ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अगर जैसे अपने को दो तरह से देखूं लोगों को, एक होता है वो आदमी जो बौद्धिक लेख लिखता है, ठीक है, और जैसे कि इकोनॉमी पे लिख रहा हो या पॉलिटिक्स पे लिख रहा हो, हम लोग उनसे भी पढ़ते हैं और प्रभावित होते हैं, लेकिन उनसे उतने इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते हैं। जो कैरेक्टर है, फिल्म का कैरेक्टर है, या जैसे कोई स्टोरी राइटर है, वो आपके जो सेंटिमेंटल साइड है उसको बहुत टच करता है। अगर आपके लॉजिकल साइड को जो लोग टच करते हैं, उनके मृत्यु पे आप बहुत आप तटस्थ तरीके से देख पाते हैं, लेकिन जिनके संग आप इमोशनली सेंटिमेंटली आपको कैटर कर रहे हैं, जैसे किशोर कुमार प्रेम के गीत गाते थे तो आपने अपने प्रेम में उनके गीत गाए हैं, लेकिन आपके प्रेम में विलेन बने थे अमरीश पुरी किसी और स्टोरी में, और आपकी स्टोरी में आपके प्रेमिका का बाप बना है, तो आप अमरीश पुरी से नहीं रिलेट करते हैं, लेकिन चूंकि आपने किशोर कुमार का गाया हुआ गीत गाया है, लिखा है, तो मुझे लगता है। और जैसे कि है, हर पूरे दो पिछले 500-700 साल से आदमी जो है तार्किक बनना चाह रहा है, इनलाइटमेंट के बाद से तार्किक बनना चाह रहा है, लेकिन हर चुनाव में, हर सिनेमा के रिलीज के बाद और ऐसी घटनाओं के बाद ये साबित हो जाता है कि हम लोग भावनात्मक ज्यादा हैं, भावुक ज्यादा हैं, कि हमारा जो इमोशनल सेल्फ है वो बहुत बहुत ताकतवर होता है हमारे लॉजिकल सेल्फ से। तो जिन लोगों से, जैसे मैंने कहा मेहदी हसन ना, तो मैं मेहदी हसन का मेरे जीवन में बहुत इमोशनल रोल है, थोड़ा सा है, मान लीजिए 5%। और हो सकता है कि मैंने बहुत सारी अकाउंट की किताबें पढ़ी, मैथ्स की किताबें पढ़ी, या लिटरेचर पढ़ा, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, जिससे मेरा करियर बना है, मेरा जीवन बना है, मैं जिन जो ज्ञान देता हूँ 80% बातें बोलता हूँ उनसे बना है। लेकिन मेरा उनसे इमोशनल कनेक्ट नहीं, उनसे इंटेलिजेंस का कनेक्ट है, तो उनसे मैं इमोशनली उस तरह से कनेक्ट नहीं हूँ। लेकिन चाहे किशोर हों, चाहे जो भी आपसे इमोशन, खासकर लिटरेचर के राइटर, क्योंकि जो प्रेम कहानियाँ लिखते हैं, या जैसे अकेलेपन की कोई कहानी लिखता है कि हरमन भूख नावेल है, एक बहुत फेमस उस राइटर हरमन कुछ ऐसे नाम है, हरमन हेस नहीं, वो तो जर्मनी के राइटर थे, ये यूरोप के मैं भूल रहा हूँ, लेकिन भूख या हंगर नावेल का ही नाम है। तो वो एक कहानी, एक आदमी है कि जैसे कैसे भूख से तड़प के मर जाता है, या भूख से तड़पता रहता है, और एक हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने खाना नहीं मिलता है। तो जो भी जीवन में 4 दिन उस तरह से रहा है, वो उससे रिलेट करता है। फिर आप उस, आपके भावनाओं को समझा, जैसे मुझे बहुत हजारी प्रसाद द्विवेदी का फेमस है कि नामवर सिंह ने लिखा है कि उन्होंने एक बार उनसे पूछा कि सुख क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि समझे जाना, कि कोई आपको समझता है। और उन्होंने फिर पूछा दुख क्या है, तो उन्होंने कहा इसका उल्टा। तो मुझे लगता है कि जो भी ये लोग हैं, जो कलाकार हैं, अभिनेता हैं, या कहानियाँ लिखने वाले लेखक हैं, वो आपके उस इमोशनल सेंस को समझते हैं। जब आपको लगता है ना, और सबसे शुरू में, अभी तो नहीं, लेकिन जब हम नौजवान थे 18 से 21 साल के बीच में, तो हाँ, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा राइटर क्यों लगता था, या शेखर एक जीवनी लड़कों को क्यों अच्छी लगती है, उनको लगता है कि ये उनकी कहानी है, इसने मुझे समझा है, हाँ, गुनाहों का देवता। तो लेकिन उस वक्त आप किशोरावस्था में, आपको लगता है कि इसने आपको समझा है कि, तो
उसके पहले हम शेखर पर सुने,
हाँ, तो अब ऑब्वियस है, जिसको शेखर एक जीवनी पढ़ा है, या किसी से भी आपका इमोशनली जहाँ कनेक्ट है, वो नावेल आपको नहीं भूल जाएगा। लेकिन जिससे आपने ज्ञान लिया है, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क, वो आपके दिमाग में उस तरह से दिल में नहीं उतरता, जिसको कहने कि दिल और दिमाग जैसे जो चीज़ें तो नहीं है हमारे अंदर, लेकिन साहित्य में जैसे होता है, तो ऑब्वियस है कि ये लोग आपके इमोशनल साइड को जो टच करेंगे, वो हमें प्रभावित करते हैं। उनकी एबनॉर्मेलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, उनके निजी जीवन से, उनका जो चरित्र है।
इसमें रोक रहा हूँ, इस वजह से मैं, एक चीज़ और है कि जो असामान्य है ना, असल में वो सामान्य है,
जो असामान्य है वो
सामान्य है, असल में बात यही है कि जो असामान्यता जिसको आप कहते हैं ना, असल में वो बहुत सामान्य है।
अच्छा।
इसीलिए आप उनसे अटैच फील कर रहे हैं, बात यही, सिंपल सी बात है, एक लाइन में एक्सप्लेन। एग्जैक्टली, मिशेल फुको ने भी कहा ना, जो असामान्य दिखता है आपको, आप कह रहे हैं कि वो असामान्य है, लेकिन असल में असामान्य नहीं है, वो बहुत सामान्य बात है। उसको उछलना, कूदना, सीटी बजाना, चुटकी काटना, दांत निकालना, चींची करना, बहुत सामान्य बात है, हर मनुष्य ऐसा करता है, इसीलिए आप उनसे रिलेट फील करते हैं। लेकिन जो बहुत सामान्यता का जो महान आवरण है, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो इतना सामान्य है, इतना शालीन है, इतना विनम्र है, इतना बिल्कुल डेकोरेटेड है कि आप उससे अटैच फील नहीं करते हैं आप उसको। लेकिन अगर आप किशोर कुमार सीटी बजा, चुटकी काट रहा है, छुप छुप कर रहा है, पुक पुक कर रहा है, बच्चों की तरह खेल रहा है, तो वो बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि हम सब ऐसे हैं, हर मनुष्य सामान्य है। तो ये जो सामान्यता और असामान्यता का जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं ना समाज में, प्रकारांतर से, इतिहास में, सभ्यता में, कि अगर आप, अगर आपने पैर फैला के बैठ गए तो आप असामान्य हैं। अरे भाई, इसमें इसमें कौन सा ऐसा नियम है बैठने का? अगर लड़कियां पैर फैला के बैठ गई, नहीं, लड़कियां टांग फैला के नहीं बैठती हैं, क्योंकि उनको उनको सिखाया जाता है कि ये असामान्य है, क्योंकि कौन, सारे मर्द टांग फैला के उठा के पात देते हैं, तो पातना मर्दों के लिए सामान्य है, टांग फैलाना मर्दों के लिए सामान्य है, लड़की लड़कियों के असामान्य है। बेसिकली ये लादी गई चीज़ें हैं, जो असामान्य है वही सामान्य है, और इसीलिए जितने भी असामान्य लोग दिखते हैं इस तरह के, चाहे वो इरफान हो, चाहे किशोर कुमार हो, वो आपको, आप उनसे, उनको आपको, क्योंकि आपको रियल लगता है, लगता है कि मेरा ही आदमी है, मेरा ही हिस्सा इसमें है। और रजनीश ने भी बोला है कि आपने, और मैंने तो, मैं खुद आपको बताता हूँ, अपने दौरान बता रहा हूँ मैं, कि कई बार आदमी बाथरूम में अपने आप चिल्लाने लगता है, दांत निकालने लगता है,
शीशे
के देख के दांत निकाल, फालतू में निकालता है, उसको कोई कारण नहीं होता। मैंने खुद अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं किया, मैं असामान्य हूँ, मतलब मैंने कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं शीशे को देख करके खुद को देख रहा हूँ, लेकिन दांत निकाल रहा हूँ मैं, जीभ निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मेरा भाई था एक, तो मैंने देखा कि वो फालतू में कुकु कुकु करता रहता ये जो इसको आप असामान्य कहते हैं ना, असल में वही सामान्य है।
नहीं, ये तो खैर इन्होंने जो कुछ कहा वो बड़ा ही अलग हो गया मूल विषय से, या हम जो कहना चाह रहे हैं अब इसको नहीं। सरल बात तो ये है कि भाई मतलब नहीं, मुझे लग रहा है कि आप सामान्य शब्द का ही परिभाषा में ही बड़ा ही अंतर हो गया। सामान्य तो सीधी सी बात है, पागलों के बीच में आप जाएंगे तो असामान्य कहलाएंगे। सामान्य अगर जैसे पागल खाने में आप जाएंगे तो एक आदमी यही बोलेगा कि ये एक कौन आदमी आ गया। हाँ, तो सामान्य जो निर्धारित होता है बेसिकली औसत से होता है कि अगर 10 लोग हैं तो 9 जैसा बिहेव कर रहे हैं वो सामान्य है, एक जो कर रहा है वो असामान्य है। और इसीलिए हम सभी लोग दूसरों को असामान्य पाते हैं।
तो अब क्योंकि आज की तारीख में जितने लोग ताली थाली बजा रहे हैं या
वो सामान्य लोग हैं, क्योंकि ऐसा ही है। सामान्य मनोदशा नहीं है, पहली बात कि हमारे बीच में स्पष्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, सामान्य कोई मनोदशा नहीं है। हाँ नहीं, हाँ अभी नया सामान्य नहीं, उनको समझने के लिए आप परिभाषा शब्द नया गढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वही है। अगर इस देश में सारे लोग कपड़े पहनना छोड़ दें तो अगर आप कपड़े पहन के निकलेंगे तो असामान्य होगा। उसी तरह अगर सारे जब थाली बजा रहे हैं तो हम लोग जो भी नहीं बजा रहे उनको लोग असामान्य के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
वो देख रहे हैं ना।
नहीं, तो आपके लिए वो असामान्य है, उनके लिए हम असामान्य है।
तीसरा कौन तय करेगा?
नहीं, तीसरा कोई नहीं तय करेगा ना।
नहीं, तीसरा तत्व खेल में तीसरा तत्व है, सामान्यता और असामान्यता के इस खेल में यह तीसरा तत्व है। और तीसरा तत्व है वो सरकार सत्ता जो निर्धारित करती है कि सामान्य क्या है। सत्ता चाहे वो पितृ सत्ता हो, चाहे वो समाज व्यवस्था हो, चाहे राज्य हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, टीचर्स हो, एकेडमिया हो, मीडिया हो, जो ये निर्धारित करता है कि सामान्य क्या है। जैसे मुसलमान
सत्ता तो कोई एक होमोजेनियस एंटिटी है नहीं।
नहीं बिल्कुल, इस केस में है नहीं, थाली बजाने के केस में है।
अभी जैसे अभी हम बाहर सड़क पे खड़े थे,
सत्ता के केस नहीं।
मैं सिंपल बताऊं, मैं शाम को गया दवा लेने तो दुकान पे मुझे कहा गया कि बॉस यहाँ बिना मास्क पहने आना अलाउड नहीं है।
हाँ।
आप मास्क पहन के आइए तो दवा देंगे आपको हम। ठीक, तो हम बोले यार मोदी जी कौन सा मास्क पहनते हैं, वो गमछा लेते हैं, देखो मेरे भी गले में गमछा है, गमछा बांध लेते हैं हम। तो बोला नहीं नहीं, आप मास्क पहन के आइए। हाँ, तो मेरा फिर हल्का समझाए उसको, हम डील किए, समझ गया। अब मेरे लिए इंस्टेंटली उस पॉइंट पे वो व्यक्ति एक सत्ता की हैसियत से बात कर रहा था। फिर हम सड़क पे गए तो वहाँ पे एक पुलिस की जीप आके रुकी और उसने कहा कि अरे आप तीन लोग साथ क्यों चल रहे हैं, है? दूर दूर चलिए। एक वो फिर इंस्टेंट सत्ता हुई हमारे लिए। ठीक है, फिर परचून की दुकान पे सुबह गए थे, वहाँ उसने कहा भाई साहब आप पीछे खड़े रहो आगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस समय का जो सामाजिक आचार व्यवहार तय हुआ है उसमें हर कोई जो है एटोमाइज जिसको बोलते हैं ना, एटोमाइज शब्द कहाँ से आता है, वो छोटे छोटे परमाणु हैं सत्ता के जो काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए कोई परम सत्ता केंद्र सरकार की बात नहीं है। मेरे अपने स्पेस में, पब्लिक स्फीयर में, इमीडिएट पब्लिक स्फीयर में मेरा दुकानदार, एक दवाई वाला, एक छोटा पुलिस वाला या सड़क पर कोई चल रहा आदमी ही मेरे लिए सत्ता है जो मुझे कंडीशन करने की कोशिश में लगा हुआ है।
ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप मेरे ख्याल से उस चीज़ को समझ रहे हैं, मतलब समझते हैं आप वहाँ तक। आप ये बताइए कि यही दुकान वाला इस लॉकडाउन के पहले तक और मोदी जी के अवतरण के पहले तक सामान्य था, उसके आपका ये जाना असामान्य नहीं लगता था, ये बिना गमछा ओढ़े हुए?
जाहिर सी बात है कोरोना नहीं आया था ना।
एक सेकंड, कोरोना नहीं आया था, लेकिन कोरोना के बारे में अगर आप ढंग से बात करें तो जानते हैं इसमें डेथ रेट 2% से ज़्यादा नहीं है, सामान्य बात है फ्लू होना। ठीक है, जो बीमार लोग हैं मर रहे हैं, हाँ इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, ये बात सही है कि जो कि खतरे की बात है, और इसमें इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सामान्यता और असामान्यता का खेल है ना, कि जो आपने थाली बजाई, इन्होंने कहा कि जिन्होंने थाली बजाई उनकी निगाह में हम असामान्य हैं, है ना? लेकिन असल में वो असामान्य,
थाली बजाना भी तो सामान्य नहीं है।
असल में असामान्य वो है। क्यों? क्योंकि वो एक केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्देशित आचार व्यवहार का पालन कर रहे हैं, और उस आचार व्यवहार के पीछे एक समग्र सांस्कृतिक प्रोपेगंडा है। उस प्रोपेगंडा के तहत जो उस खांचे में नहीं फिट बैठ रहा उसको वो असामान्य घोषित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली सामान्यता का ये जो पूरा खेल है असामान्यता का ना, ये कहीं ना कहीं से एक कल्चरल प्रोडक्ट है, ये बनाया जाता है।
तो कहने का मतलब ये कि ये जो दौर चल रहा है,
हाँ,
इसके बाद ये कल्चरल प्रोडक्ट टिकने जा रहा है क्या?
बिल्कुल टिकेगा। ये
नहीं, आप दोनों जो कह रहे हैं उसका चूंकि मैं प्रतिपक्ष जैसा महसूस कर रहा हूँ इसलिए मुझे बोलना जरूरी है कि
प्रतिपक्ष महसूस कर रहे हैं
नहीं,
अभी हम अगर इसको उल्टा बोले होते ना तो आप वही बात बोलते जो मैं बोलूं।
ठीक है, या तो निजी आरोप हुआ, लेकिन मैं जो आपने जो कहा मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्वतंत्र होना जो है ना, नहीं नहीं होता क्या है, इसकी बात वो नहीं है, बात वो है कि जैसे दार्शनिक निष्पत्तियों पे ना विचार करने की ना क्षमता ही नहीं है सामान्य लोगों में, लेकिन वो बातें उन्हीं पे करते हैं। जैसे मृत्यु हर कोई बोलता है लेकिन उस पे विचार करना संभव नहीं होता उसके लिए। तो जैसे सामान्य शब्द है तो उस पे विचार करने के लिए ना तो उस मानसिक रूप से आप तैयार नहीं है अभी, मुझे लग रहा है। क्योंकि आप जो सुनिए, मुझे बोलने दीजिए ना, ये तो मेरे इस मेरा बयान है, स्थापना है, सुनिए तो मैं बता रहा हूँ इसीलिए। क्योंकि जैसे कि आपके अलावा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अरे कि हाँ कि हाँ ठीक है, ये तो कि क्योंकि पहले आप जितनी भी आप जो कहना चाह रहे थे उसमें आपने ये मान लिया कि आपके बाहर जो कुछ है, आपके व्यवहार और विचार के बाहर जो कुछ है, अरे सुन बोल तो लेने दीजिए, जो कुछ है वो किसी के द्वारा निर्धारित होता है, कल्चरल रूप से तैयार किया जाता है, सत्ता द्वारा तैयार किया जाता है। और आप किसी स्वतंत्र, मतलब जिसको अगर ये समझेंगे कि क्या बोलते हैं, आर्किमिडियन स्पेस से आप आ रहे हैं, अंतरिक्ष से आ रहे हैं, आप अंतरिक्ष से नहीं आ रहे हैं, आप भी इसी सिस्टम की, इसी सत्ता की, इसी कल्चरल पैराडाइम की पैदाइश हैं। आपको भी कुछ एजेंसीज गवर्न करती हैं, जैसे उनको एक एजेंसी गवर्न करती है, आपको भी एक एजेंसी गवर्न करती है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि इस जो स्पेस एंड टाइम है, या मान लीजिए जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हैं, वो दोनों एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। आप स्वतंत्र हैं और वो किसी बिंदु से, जिसको कहते हैं हमारे क्या,
मैं ये नहीं करूंगा,
निर्धारित होता है। सुन तो लीजिए, तो आप भी कल्चरल बाय प्रोडक्ट है। नहीं, क्रांसी ने नहीं कहा, नहीं नहीं कहा है, ये सब नहीं कहा है, ये सब नहीं कहा है, ये सब नहीं कहा है भाई। इसके बारे में बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है वुडी एलन ने, कि एक पात्र रहता है और उसके पीछे सबाल्टर्निस्ट बहुत फेमस हैं, फूको या देरिदा में से कोई रहता है। तो एक आदमी लाइन में खड़ा है और वो बार बार, एक प्रोफेसर लाइन में खड़ा है और अगले वाले को बार बार बता रहा होता है कि फूको या देरिदा जो भी उसमें एक है, तो वो उन्होंने ये कहा। अंतिम में सुनते सुनते पीछे जो खड़े थे फूको या देरिदा, उन्होंने कहा कि भाई साहब, बोला क्या है, बोला मैंने ये सब नहीं कहा।
तो कहने का मतलब क्या है, मतलब ये समझ नहीं पाए।
आलोचना करने का हक नहीं, असल में इनके बाबा रंगनाथ का ये केमिकल लोचा है, इसको कहते हैं केमिकल लोचा। ये इस मेंटल एजाइलम, एक तो इस पूरा देश मेंटल एजाइलम में है, और दूसरा इनका एक सेल्फ एजाइलम है, इसका एक सेल्फ एजाइलम में है ये, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा कि दिन है तो बोलेंगे नहीं, दिन नहीं, रात जैसा लग रहा है।
एक बार सीरियस वास्तव में इस पर अगर लौटे, मतलब टू बी मोर सीरियस एंड प्रिसाइज, कि मतलब अगर कल्चरल कंडीशनिंग वहाँ काम कर रही है, तो जो प्रतिपक्ष है उस पर भी, उस पर कौन सी कल्चरल कंडीशनिंग काम कर रही है?
तो मैं,
हम लोग भी तो कल्चरल प्रोडक्ट हैं।
आप है कैसे नहीं हो सकते, मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना।
हाँ हाँ।
जिस तरह से मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, उसी तरह से मनुष्य सांस्कृतिक प्राणी भी है, ठीक है। तो आप बाबा बताइए कि आपका उछाल, आप बचपन में आप कभी दांत चियाए नहीं होंगे शीशे में देख करके, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे बाबा, आप कैसे करेंगे? आप बताइए,
अगर आप समझ सकेंगे तो एक लाइन का है, नहीं समझ सकेंगे तो फिर आपके लिए नहीं है,
नहीं, हाँ,
कि
नहीं।
वो प्रोडक्ट है, हम लोग बाय प्रोडक्ट है,
वो प्रोडक्ट है, हम लोग बाय प्रोडक्ट,
हाँ,
हम लोग बाय प्रोडक्ट।
अब उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ऐसे जुमले फेंकते रहते हैं, अब इसको कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए,
किसी भी चीज का बाय प्रोडक्ट क्या होता है,
कोई सुनेगा,
थोड़ा सा इसको वो कीजिए भाई, थोड़ा सा इसको फैलाइए मामले को।
नहीं, किसी भी फैक्ट्री में सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह है, तो जो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो मूल प्रोडक्ट के संग अपने आप पैदा हो जाता है, कुछ टेढ़ा पैदा हो जाता है, रिडक्शन वाला जो माल कहते हैं। तो कुछ लोग जो अपने को असामान्य या स्वतंत्र महसूस करते हैं, बेसिकली वो इस कल्चरल सिस्टम के बाई प्रोडक्ट हैं, कि प्रोडक्ट तो बनाना था कुछ और,
काउंटर प्रोडक्ट बोलते हैं।
नहीं, काउंटर तो तब होता है जब आप स्वतंत्र रूप से अपनी एजेंसी से किए होते, आप अपने से आप पैदा हुए होते, नहीं आप अपने से पैदा ही नहीं हुए थे, तो आप बाई वहां से शुरू ही दूसरे की मर्जी से पैदा हुए, तो नहीं काउंटर प्रोडक्ट, तो
काउंटर प्रोडक्ट,
हाँ हाँ वही बतानी पड़ेगी ना कि हाँ नहीं है, फैक्ट्री एक ही है, नहीं स्टेट, देखिए स्टेट अपने आप में कोई चीज है, सोसाइटी उससे बड़ी चीज है स्टेट से, कि इसी सोसाइटी के हम बाई प्रोडक्ट हैं, वो लोग प्रोडक्ट हैं। मतलब मैं तो इसी तरह से समझना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को या अपने आसपास आप जैसे मित्रों को,
मतलब अगर मान लीजिए कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि ताली और थाली बजाने वाले अल्पसंख्यक हो जाएं, तब क्या कहेंगे कि वो लोग बाई प्रोडक्ट हैं और हम प्रोडक्ट हैं?
हाँ बिल्कुल, अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ यही है कि जिस समाज में ऐसे कब नहीं रहे लोग कि जो थाली बजाने वाले टाइप के रहे हैं, यही नहीं बोलते कि समाज में नफरत बढ़ गई है, यानी पहले कम थी, ऐसा कोई समाज तो 3000 साल में हुआ नहीं है जो सरो मतलब सतयुग के बाद, एक मिनट सुनिए, कि जो हमारी धार्मिक मान्यता भी है ना उसमें सतयुग में ही सत्य बचा था, उसके बाद द्वापर त्रेता में आते आते एक चौथाई घटा, एक चौथाई घटा, एक चौथाई घटा, अभी तो कलयुग है। तो उस बेसिकली मूल मामला है कि बहुसंख्यक कैसे हैं, जब बहुसंख्यक थाली नहीं बजाएंगे तो आपको समाज अच्छा लगेगा थाली ना बजाने वालों को, और बहुसंख्यक अगर थाली बजाने वाले हैं तो, और इसीलिए जो आप कह रहे हैं अब वो सोशल जितने भी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ना उन्होंने इस चीज़ ये जो स्वतंत्र या निष्पक्ष जैसी चीज़ों को हटा दिया, मूलतः आपकी कोई एक पोजीशन है, आपकी ही भी पोजीशन है, ये अलग बात है।
मनुष्य जितना सामाजिक प्राणी है उतना ही सांस्कृतिक प्राणी भी है, अरे थोड़ी नहीं कि मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सांस्कृतिक प्राणी भी है, तो हम अपने अपने तरह से अपने अपने सांस्कृतिक प्राणी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं जो आप कह रहे हैं कि ये अगर थाली बजा रहे हैं जो आज लोग वो सामान्य, सवाल ये है कि इसका निर्धारण कहाँ से हो रहा है, इसकी वैधता कहाँ से मिल रही है, इसको इसका मापदंड कौन तय कर रहा है, सवाल ये है। एक समाज को, एक पूरे देश को कौन आदमी है जो ये जो नॉर्मलाइज कर रहा है चीज़ों को, मूल सवाल ये है, सामान्यीकरण कौन कर रहा है चीज़ों का, ये मुख्य सवाल है, वो कैसे हो रहा है ये सवाल है, समाज लोग कर रहे हैं।
ये सवाल तो आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय के पहले इनवैलिड हो जाएगा।
कैसे? एक सेकंड में इस पे वो स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले तो ये फिर वही है कि अवधारणात्मक स्तर पे बहुत समस्या है, कोई एक आदमी ये सब नहीं कर रहा है, व्यापक सामाजिक स्वीकृति से ही कोई चीज सामान्य बनती है,
कुछ है कुछ
सामाजिक स्वीकृति समाज से बनती है कि अगर
कुछ कल्चरल चेंजेस चाहे
हैं, अरे अरे समाज उसको स्वीकृत करके स्वीकृति दे रहा है, अगर ये समाज हर आदमी जो है उसको स्वीकृत कर रहा है, बहुमत उसको स्वीकृत कर रहा है, नहीं किसी एक आदमी ने समाज की मनोसंरचना को बदल दिया है ये मानना तो बहुत ही मतलब सरलीकृत, हाँ लेकिन समाज उसको स्वीकार कर रहा है, समाज ने उस आदमी को अपने जैसा बनाया है, उसको चाहिए था, मैं इस तरीके से नहीं देख रहा हूँ कि समाज को वो आदमी चाहिए था, उसके कलेक्टिव जो डिजायर है उसको फुलफिल कर रहा है, जिस दिन नहीं फुलफिल करेगा उसको फेंक देगा।
नहीं ये बात ठीक है, इसमें वो जो जो सत्ता, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ये बात सही है कि वो जो सत्ता हमें आज चला रही है, जिसको सामान्यीकरण कर रही है, उसको उसको हम ही ने दिया है, हम हमारी हमारी अभिव्यक्ति है असल में है, वो हमारी ही अभिव्यक्ति है असल में, उसमें इस बात से मैं आपके सहमत हूँ,
लेकिन हम अपनी अभी
नहीं,
लेकिन से
अपनी मतलब अपनी मतलब कि बहुसंख्यक
एजेंसी इस देश को चला रही है, इस पूरे वो एजेंसी अगर हमारी ही अभिव्यक्ति है तो उसमें दिक्कत क्या है?
नहीं,
पॉलिटिकल टाइम लिमिट का मामला नहीं है इसमें मसला, हम ये कैसे दो
हमारी
ऐसे हम ये दो दो सवाल मेरे
हमारे मतलब बहुसंख्यक
पाँच साल या दो साल के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे ना, सामान्यता पागलपन अचानक से लगने लगा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है ना।
नहीं नहीं पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल ही नहीं है
वही,
ये तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक मामला है भाई,
5 साल के बाद की बात नहीं।
ना ना ना,
कोई भी नेता स्वीकृत होता है, अगर हमारा पहला प्रधानमंत्री स्वीकृत हुआ समाज द्वारा और लोकप्रिय बना तो भी यही एजेंसी काम कर रही है, और अगर हमारा 15वां प्रधानमंत्री समाज द्वारा स्वीकृत हुआ और जो भी लोकप्रिय हुआ तो वही एजेंसी काम कर रही है, वही समाज उसको स्वीकार करके महान बना रहा है, ऐसा उस वक्त भी उनके आलोचक थे, कट्टर आलोचक थे,
तो समाज स्टैटिक है, मतलब
समाज का स्टैटिक है, तो नेहरू से मोदी तक आ गया, समाज के बदलाव की जो वो तो जो उदाहरण दिया उसी में दिख रहा है कि समाज बदलते बदलते नेहरू जी से मोदी जी तक आ गए।
लेकिन बात जो है मूल सवाल था जो आप कह रहे थे कि किशोर कुमार अगर नाचता उछलता है, गाता है चीची पुपू करता ही हाहू करता है, चाहे कोई जंगली कहे कहता रहे बाहर में जाए दुनिया, ठीक है, इरफान अगर नॉर्मल दिखता है सामान्य मापदंडों के हिसाब से कि वो टांग फैला के बैठा हुआ है, दारू पी रहा है, अविनाश दास के साथ फोटो खिंचा रहा है, जेएनयू में जा रहा है, और क्या नाम इसका मोटके का क्या नाम है, क्या नाम उसका अनुराग कश्यप है, तो वो भी एबनॉर्मल दिखता है लोगों को, लेकिन ये असल में जिसको हम कहते हैं ना कि जो एबनॉर्मल है वो मुझे लगता है कि ये एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो सामान्य है, असामान्य है वो सामान्य है, मैं तो यही मानता
हूँ। चलिए, तो कुल मिला के मतलब दो तरह के मत निकल के आ रहे हैं, हैं, और अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हमेशा दुनिया में दो तरह के मत रहे हैं। हमारे एक मास्टर थे, वो कहते थे कि देखो कोई बात आती है तो बोलते थे देखो इसमें दो बातें हैं, या तो ये होगा तो ठीक है या तो नहीं होगा, तो दो बातें हमेशा रही हैं और रहेंगी, असल में दो ही बातें होती ही हैं इनफैक्ट। अब इसमें आप तय कर लीजिए कि क्या प्राथमिक है और क्या उससे निकला हुआ है। भाई सबसे पुरानी दार्शनिक बहस जो है वो तो यही है ना कि भाई चेतना
प्राथमिक है या पदार्थ प्राथमिक है, यही ना है। हाँ, अंडा पहले आया कि मुर्गी आई, अंडा मुर्गी के अलावा तीसरा तो कोई है नहीं। हाँ, तीसरा अगर है तो अंडे या मुर्गी जो खाने वाला है, आदमी जो खाने वाला ना, तो अंडा या मुर्गी जो खाएगा हमको उससे कोई सबका है नहीं, अंडे या मुर्गी का बहस है। तो दो बातें रहेंगी हमेशा। बहरहाल इरफान नहीं रहे और हम इरफान के बहाने कुछ बातें कर पाए। इरफान कुछ बहस भी हुई और मतलब ऑब्वियसली असामान्य लोग हैं यहाँ पे, मेंटल असाइलम का रेंट है तो इस तरह से ही बातें होंगी। तो बहुत ज़्यादा अनुशासन की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए इस पॉडकास्ट में। तो सुखी रहिए, आबाद रहिए, अमेरिका रहिए, गाजियाबाद रहिए। मिलते हैं एक आध दिन में फिर से, और हम लोग फिर से आते हैं। और अभी भी देखिए बहस चल रही है। तो मिलते हैं, और इसके आगे कुछ कहना नहीं है। सुनते रहिए लगातार पागल खाने की तूती। जय हिंद।